90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित कार्यक्रम सीप के मोती। हमारे जीवन का आधार हैं विचार, संस्कार, जीवन शैली और कार्य व्यवहार। इन चारों तत्वों के परिष्कार का प्रयास है हमारा कार्यक्रम सीप के मोती। प्रस्तुत है सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक। श्रोताओं, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आप वो हैं जो आपकी गहन इच्छा है, क्योंकि जैसी आपकी इच्छा है वही आपकी आकांक्षा है, जैसी आपकी आकांक्षा है वैसा आपका कर्म है, और जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपका भाग्य है। यानी अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं। सामर्थ्य की जमीन पर हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं, ये बीज समय पाकर बढ़ता है, फलता फूलता है और हमें भविष्य का फल देता है। और खास बात ये कि 24 घंटे की एक इकाई जिसे हम एक दिन कहते हैं, उस दिन को नियमित कर लेने से, उसे सही दिशा दे देने से, उसे नियोजित करने से ही हम अपने भविष्य को मनचाहा आकार दे पाते हैं। इस संसार में हर इंसान चाहता है कि वो उन्नति करे, उसका आज जैसा है उससे बेहतर उसका कल हो, और इसके लिए जरूरी होते हैं कुछ छोटे छोटे से कदम जिनसे चलकर हम मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी ये कोशिश रोज होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए। उन्नति के वो 7 सोपान क्या हैं जिन पर चलकर, जिनका पालन करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे। हमारे बीच हैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष इतिहास विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। नमस्कार ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
नमस्कार सुनीता जी।
बहुत सुंदर विषय है और मुझे लगता है कि हर किसी की रुचि होगी इस विषय में, क्योंकि उन्नति कौन नहीं चाहता। हम किस तरह से उन्नति कर सकते हैं, वो कौन सी सीढ़ियां हैं, कौन से सोपान हैं जिन पर हर दिन चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। तो जो उन्नति के 7 सोपान हैं, सबसे पहले तो आप उस पर ही प्रकाश डालें, फिर एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे।
सुनीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन नहीं चाहता उन्नति करना। वैसे भी कहा गया है कि या तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां हम पर लिखने को मजबूर हो, या ऐसा लिख जाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे लिखी हुए को पढ़ती रहे। तो यही उन्नति है, और उन्नति एक प्रक्रिया है। और इसमें जो 7 सोपान की बात की गई है, तो ये जितने भी हम महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो हम अगर उनको बारीकी से अध्ययन करें और देखें तो निश्चित रूप से उनके कुछ ऐसी आदतें थी जिनके कारण वो महान बने। तो ऐसी कुछ आदतें अगर हम अपने में डाल लें तो हम भी महानता की ओर उन्नति कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो 7 सोपान की बात है, तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि प्रतिदिन हम अपने आप में कुछ ना कुछ सुधार करें, और दूसरा जो है वो है कि हम यथासंभव वर्तमान पर फोकस करें, और तीसरा जो सोपान है वो प्रतिदिन हम नए आइडियाज को लिखें, और चौथा जो सोपान है वो एक टू डू लिस्ट बनाएं, जो भी कार्यसूची है हमारी आवश्यक कार्यों की उसकी लिस्ट बनाएं। पांचवा, जल्दबाजी कदापि ना करें, और छठवा, अपनी गलतियों से बिल्कुल भी ना डरें, और सातवा और अंतिम सोपान है कि यथासंभव अच्छे व्यक्तियों के साथ रहें, सत्संग करें। ये 7 सोपान है, और निश्चित रूप से ये 7 सोपान हमें लगता है कि उन्नति के मार्ग पर हमें अग्रसर कर सकते।
तो बहुत सुंदर बात आपने कही है ब्रजेश जी, कि उन्नति जो है वो एक प्रक्रिया है, पूरे जीवन चलती है, हर रोज हम नया सीखते हैं, अमल करते हैं, और उस हिसाब से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन आगे बढ़ता चला जाता है अच्छे कामों के साथ। और उन्नति वही है कि जो हमारा काम है वो पीढ़ियों बाद आने वाले समय में भी प्रतिध्वनित हो, सुनाई दे, दिखाई दे, लोग याद करें, लिखें। तो इस तरह की उन्नति की आपने बात की है, और 7 सोपान आपने बताए, तो मुझे लगता है कि अब 7 सोपान पर हम विस्तार के साथ चर्चा करें, ताकि हमारे श्रोता उसे याद भी कर लें और किस तरह से उस पर अमल करना है इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करते चलेंगे। तो पहला सोपान आपने बताया है ब्रजेश जी, प्रतिदिन अपने को सुधारें, अपने भीतर एक सुधार हम करें, इस पर आप प्रकाश डालें।
कहते हैं ना कि आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, उन्हें सुधार
क्या
सकते
बात
हैं।
जी जी,
और आपकी सुधरी हुई आदतें आपके भाग्य को बदलने में सक्षम होती है।
बिल्कुल,
तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है और हमें चाहिए कि प्रतिदिन हमारी आदतों में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें। और मैं कह रहा हूँ सबसे कम परसेंटेज की बात करें तो 1% हम अपने कल से अपने आप को बेहतर बनाएं। और यदि हम वर्ष भर इस प्रकार का करते रहे तो कंपाउंड रूप से हम देखेंगे कि वर्ष भर में हम 3800% अपने आप को सुधार लेंगे।
क्या बात है।
तो आप ये मान के चले अगर हम ऐसा कर सके और एक वर्ष तक नियमित रूप से हमने ऐसा कर लिया तो हम अपने आप को एक नए अवतार में, नए रूप में पाएंगे। और बिल्कुल छोटी छोटी आदतें, कोई बड़ी आदत नहीं, कोई छोटी सी आदत, किसी न किसी अच्छे व्यक्ति की आप किसी से मिलते हैं उसकी एक आदत देख लीजिए और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में ढालने का प्रयास किए, तो इस प्रकार प्रतिदिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं।
तो प्रतिदिन अपने भीतर सुधार करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर इंसान जो जिंदगी में उन्नति चाहता है या जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, जिसको लगता है कि भाग्य उसका साथ नहीं देता है, जैसी जिंदगी वो सोचता है वैसी जिंदगी नहीं है, तो अगर हमारा दिन वैसा ही बीतता जा रहा है, जैसा कल था वैसा ही दिन आज है, जैसा आज है वैसा ही दिन कल है, हम उसी तरह से गुजार रहे हैं, तो फिर जीवन में परिवर्तन भी संभव नहीं है। तो आवश्यक है कि हम अपने भीतर सुधार करें। और मुझे लगता है ब्रजेश जी कि अगर हम सुधार की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता है किसी इंसान के सुधरने के लिए कि वो आत्मचिंतन करे, एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, एक ईमानदार दृष्टि से खुद को देखना, स्वयं की कमी को महसूस करना कि मेरे भीतर कमी क्या है। जब वो कमी हम महसूस करते हैं और उसे स्वीकारते हैं, उसके बाद ही इस परिवर्तन की तरफ हम बढ़ सकते हैं।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी देखिए, आप कई लोगों से मिलते हैं और हर आदमी में कोई ना कोई एक विशिष्ट गुण होता है, तो आप उसका गुण को ही अगर ले लेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतिदिन अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया में आगे बढ़ ही सकते हैं।
तो एक उदार दृष्टि होनी चाहिए और दूसरों की जो अच्छी बातें हैं उनके लिए हमारे भीतर एक प्रशंसा का भाव हो। कई बार होता है कि इंसान खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहा होता है, उसे लगता है कि जो है हम हैं, हमें सब कुछ मालूम है, जैसा हम जी रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर ये दृष्टि है तो सुधार संभव नहीं है। जिस किसी भी इंसान से हम मिलते हैं तो उसके भीतर कोई ना कोई गुण है, और पहले तो उसको प्रशंसा करें, उसकी अप्रिशिएट करें और उसे फिर अपने भीतर लाने का भी प्रयास करें। दूसरा सोपान जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, आपने कहा है वर्तमान पर फोकस करें, इस पर कुछ आप रोशनी डालिए।
सबसे पहले तो बीते कल को हमें भूलना होगा, जो कुछ बुरा हुआ उसे याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा फोकस है पूरा वर्तमान पर होना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है वो हमारे अतीत के कार्यों एवं आदतों की वजह से है, लेकिन भविष्य में जो कुछ भी होंगे वो हमारे आज की आदतें और कार्य की वजह से होंगे। अतः वर्तमान सुधार कर, वर्तमान पर फोकस कर, हम निश्चित रूप से एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और अतीत का पछतावा एवं भविष्य की चिंता, ये दोनों ही हमें तनाव और एंग्जाइटी के अलावा कुछ नहीं दे सकते और आने वाले कल की एनर्जी को भी ये चुरा लेते हैं। अतः हम वर्तमान को सर्वशक्तिमान माने, तो आज जो भी बेहतर हो सकता है उसको करें तो निश्चित रूप से हमारा कल उससे बेहतर ही होगा। तो बेहतरी कहा गया ना, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की आशाओं की गठरी ही अहंकार है, तो हमें अहंकार नहीं है। अतीत जा चुका है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया और भविष्य भी आया नहीं है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो वर्तमान में कर सकते हैं। वर्तमान को बिल्कुल ये मान के चलिए वर्तमान ही सब कुछ है, एक एक पल का आप यूज कीजिए और निश्चित रूप से आप उन्नति के मार्ग की ओर से अग्रसर होना शुरू हो जाए।
तो याद रखने की बात है कि अतीत व्यतीत हो चुका है, उसे बार बार खींचकर अगर हम वर्तमान में लाने की कोशिश करेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकेगा। और भविष्य जो है वो अनदेखा अजाना है, तो उसकी बहुत अधिक चिंता वो भी व्यर्थ की बात होती है। अक्सर देखने में आता है ब्रजेश जी कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें गुजरा हुआ कल ही बड़ा अच्छा लग रहा होता है, उन्हें लगता है वाह क्या दिन थे, अब तो सब खत्म हो गया। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि बहुत खराब अतीत था इसलिए हम आज इस अवस्था में हैं, तो हमेशा अतीत की ओर मुड़कर वो देखते हैं, या तो दुखी होकर या प्रसन्न होकर। जबकि जीवन तो वर्तमान है। जो आज समय आपके हिस्से आया है वही जीवन है, उसे आप किस तरह से गुजार रहे हैं उस पर ही निर्भर करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। हालांकि देखिए, भविष्य की चिंता की आपने बात की ब्रजेश जी, तो भविष्य को लेकर चिंतित तो हर इंसान होता है। एक चिंता मन में आती ही है कि एक प्लानिंग कर लें कैसा हो, कैसा समय होगा, तो इस पर थोड़ा सा आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि किस तरह से इस चीज से पार पाया जाए।
आप जब अपने आप को वर्तमान पे फोकस कर कर व्यस्त रखेंगे तो आपको इतना समय ही नहीं मिलेगा कि आप भविष्य की सोच पाए, क्योंकि जब आप फ्री होंगे तो आपको भविष्य की चिंता सताएगी। देखिए, आज मोबाइल हमारे हाथ में है, व्हाट्सएप है, इसमें हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं और कोई भी चीज को पढ़कर, और कई बार इस प्रकार की जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें कई बार इस तरह की आ जाती है कि आने वाले ये संकट आने वाला है, तो हम अनावश्यक उस संकट की सोचने लगते हैं। देखिए, जो चीज सामने आई नहीं है उसके, और फिर एक चीज है कि कोई भी चीज अगर आने वाली है तो सबके लिए आने वाली है, हमारे पत्नी के लिए आने वाले नहीं है, तो हम उससे प्रेरणा ले कि हम अपने आप को इतना सशक्त बना लें कि हम आने वाले कल का बेहतर ढंग से सामना कर पाए। और एक बार आपको अगर समझ में आ जाएगा कि भविष्य जो आया नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और कल का कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो आज है वही सब कुछ है, और कई महान लोगों ने कहा भी है कि आप यह सोच लीजिए कि आपके पास सिर्फ आज का दिन है जीवन में, और आप ऐसे काम करें कि सिर्फ आपको आज का दिन ही मिला है, कल शायद आप कुछ कर भी, तो फिर निश्चित रूप से भविष्य की बात खत्म ही हो जाती है।
बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले, ये भी कहा जाता है, तो न बीती की ज्यादा आप सुध लीजिए न आने वाले समय की, वर्तमान को आप संवार लीजिए तो भविष्य स्वयं ही संवर जाता है। तीसरा जो सोपान आपने बताया ब्रजेश जी, आपने कहा कि प्रतिदिन नए आइडियाज लिखें।
हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन करीब 70,000 विचार आते हैं, और हम क्या करते हैं किसी एक विचार के साथ कनेक्ट होकर सोचना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे ये विचार अच्छे भी आते हैं, खराब भी आते हैं, ये अतीत के जो पश्चाताप, अतीत में आपने जो किया उसको लेकर भी विचार आते हैं, और भविष्य में कोई खतरा है उसको लेकर भी विचार आते हैं, तो विचारों का तो नैसर्गिक प्रवाह है और ये चलता रहना चाहिए। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे जो विचार है 70,000 जो भी आ रहा है पूरे विचार आ जाए। इट मे बी पॉसिबल कि आप कोई पांचवे विचार आया और उसमें कोई भविष्य की चिंता से संबंधित आया, उसमें अटैक दे और आप दिन भर उस पर सोचते रहे, तनाव में रहे, एंजाइटी में रहे, तो आपके आने वाले अच्छे विचार थे उनका फ्लो बंद कर दिया, उनका फ्लो, तो आप अपने विचारों को सतत देखते रहे और जो भी एक आइडिया अच्छा है उसको लिख लें, एक छोटी सी डायरी अपने पास रखें और उसको लिखें। इससे क्या होगा कि आपको इतनी पता चल जाएगा कि हम सोचेंगे तो अगला विचार नहीं आएगा, आपको 10 आइडिया लिखना है, तो आप निश्चित रूप से अच्छे से अच्छे आइडिया के लिए तलाश, और रात तक आते आते आपको लगता है कि नहीं पांच ही हो पाए, तो आप याद कर लें कि और कौन कौन से विचार आए थे, तो 10 आइडिया जब आप लिखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि यह आपको सुपर पावर बनाने में सक्षम होगी। और हमारा जो चेतना है, चेतना का काम ही है कि भविष्य का मार्गदर्शन देती है, और ये ऑटो डाउनलोड है, ये प्रकृति से विचार आते हैं हमारे मस्तिष्क में, और प्रकृति हर व्यक्ति को महान बनाने के लिए प्रयास करती रहती है। तो इसमें भी पॉसिबल कि आप 10 आइडियाज डेली लिखेंगे और धीरे धीरे उन पर आपका काम भी होता जाएगा, दूसरे दिन फिर 10 आइडियाज आपके आएंगे, तीसरे दिन फिर आएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर एक सतत ऐसी प्रक्रिया में आप जुड़ जाएंगे कि आप उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होने लगेंगे, और न जाने बहुत सा एक आइडिया ऐसा होगा जो आपके जीवन में ऐसी क्रांति ला सकता है कि आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने में सक्षम हो।
70,000 विचार आते हैं तो आप कोशिश ये करें कि कुछ नया चमकीला अच्छा विचार हो जो आपके भविष्य को एक नया रास्ता दिखाए और जिंदगी उस पर चले और प्रगति की ओर बढ़े। मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी कि अगर हम किसी चीज को लिख लेते हैं तो एक संकल्प हमारे भीतर आ जाता है, एक संकल्प होता है कि ये हमें करना है, तो आइडिया आना और उसे लिखना, तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। कई बार विचार आया और वो बह गया, विचार ही तो हवा की तरह बह जाता है वो, तो अगर लिख लेते हैं तो वो एक संग्रह हो जाता है और बार बार आपको वो याद दिलाता है कि हमें इस पर अमल करना है।
सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब 10 विचार लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क एक अलग तरह से काम करता है, रात को जब सोते हैं तो अवचेतन मन में भी इस तरह के अच्छे आइडियाज आते हैं, और दूसरे दिन जो आइडिया एक अच्छा आया उस आइडिया पर सफल होने का मार्ग आपको ऑटो डाउनलोड आपके मस्तिष्क में आता है। आप देखेंगे धीरे धीरे एक चैनल बनेगा कि आज जो आइडिया आया कल उस आइडिया से संबंधित उस कार्य को बेहतर करने का तरीका आएगा। आपको शक्ति देते रहेंगे और उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर करते रहेंगे।
अब चलिए चौथे सोपान की तरफ चलते हैं और चौथा सोपान है टू डू लिस्ट बनाना।
कई काम हमारे ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग में रहते हैं। हमें कभी भी एकदम विचार आता है कल हमें ये करना है या ये करना है, और चूंकि हम उसको लिखते नहीं है तो वो विचार निकल जाता है। मालूम पड़ा कि अचानक आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस देखा और वो एक्सपायरी डेट हो गई उसकी, तो आपके अंदर विचार आया था रिन्यू कराना, लेकिन आपने उस टू डू लिस्ट में नहीं लिखा तो वो काम एक जरूरी काम छूट गया। अब आपको ये चिंता लगती है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। जैसे कई काम रहते हैं, कभी पॉलिसी का प्रीमियम भरना है या आपके कई चीजें पासपोर्ट आपका रिन्यू कराना है या कई ऐसे काम होते हैं जो जरूर, तो हमारा ये मानना है कि आप 25 ऐसे कामों की सूची बना लें जो कि आपको करना ही करना है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि डेली की करें, डेली करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने जीवन में जो जो करना चाहते हैं, जैसे आप आइडियाज लिख रहे हैं, अब आइडियाज में लगा मुझे ये करना है, तो आप ऐसे 25 कामों की सूची बना लें और उन 25 कामों की सूची में से अब आप 5 ऐसे काम चाहती है जो कि आपके लिए अनिवार्य करना और जो पीछे उनको बता दीजिए, और 5 कार्यों को आप प्राथमिकता से लिख लीजिए कि पहला कौन सा जरूरी है, दूसरा। इससे क्या होगा कि आपका जो अनावश्यक एनर्जी खर्च होती थी वो बच जाएगी और आप पूरी की पूरी जो ऊर्जा है वो आपके महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाएंगे, और आपने जो ये कार्य की सूची बना ली फिर डेली प्रतिदिन उस कार्य को कैसे करना है उसके बारे में सुबह ही लिख लें, तो इससे आपका टू आपको बहुत मदद करती है। और जितने भी महान लोग हुए हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, आप देखेंगे उन्होंने कहीं ना कहीं टू डू लिस्ट का इस्तेमाल किया।
जब हम एक लिस्ट बना लेते हैं ब्रजेश जी, तो एक दिशा तय हो जाती है कि इतने बजे तक हम ये कर लेंगे, इस काम के बीच में हम ऐसा कर लेंगे, ये भी एक बात होती है, तो समय का प्रबंधन भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे, और प्राथमिकता तो तय ही हो जाती है। तो हम नए आइडियाज़ लिखें और मान लीजिए 25 आइडिया या 30 आइडिया आपके पास आ गए हैं, तो अगर उसको आप अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करते हैं तो उन पर अमल भी इस बहाने से होने लगता है, तो ये बहुत अच्छी बात रही। अब चलिए पांचवें सोपान की तरफ चलते हैं, और ये पांचवा सोपान है कि जल्दबाजी न करें, इसका क्या महत्व है?
बहुत अच्छे कवि हुए डॉक्टर रामदर्श में, उनके पिता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, बड़ी अच्छी कविता मुझे बड़ी पसंद है। वो लिखी थी, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी किराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहाँ आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी आया, मगर धीरे धीरे मगर तो आप ये मान के चलिए कि ओवरनाइट सफलता किसी को नहीं मिलती, ये मिथक भी ज्यादा कुछ नहीं है। आप जिस व्यक्ति को भी सफल देखते हैं आप उसकी मेहनत को नहीं देख रहे होते हैं, उसने न जाने कितनी मेहनत की है। कई बार ये लगता है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमें लगता है कि डॉक्टर ने हमसे इतनी बड़ी फीस ले ली और मात्र 1 मिनट में दवा लिख दी, तो हमने ये नहीं देखा कि उसने उस 1 मिनट में आपके मर्ज को पहचानने के लिए अतीत में कितनी मेहनत की है।
बिल्कुल बिल्कुल।
एक मुझे चीज याद आती है कि गाड़ी खराब हो गई और ठीक नहीं हो रही थी, तो एक मैकेनिक को बुलाया गया, अच्छा मैकेनिक था, और कहा जाता था उससे अच्छा मैकेनिक कोई शहर में नहीं है। वो आया, उसने पूरी गाड़ी देखी और गाड़ी देखने के बाद उसने एक स्क्रू ड्राइवर से एक स्क्रू को टाइट कर दिया, और उसके बाद उसने कहा कि भाई आपको कितने पैसे दे दें, तो उसने कहा 2,000 रुपए। तो उसको मालिक ने कहा कि भाई आपने सिर्फ एक स्क्रू ही तो कसा है और इसके 2,000 रुपए मांग रहे हैं, तो उसने कहा देखो ये स्क्रू कसने के 2,000 रुपए नहीं है, ये इस बात मिलने के 2,000 है कि कौन सा स्क्रू कसना है।
तो ये जो कौशल होता है उसकी कीमत को समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं, और अक्सर ये तो अमूमन घरों में होता है कि आपका एक छोटा सा काम कोई आगे करता है तो आपको लगता है बहुत जरा सा, कुछ वक्त ही नहीं लगा, बहुत जरा देर में ये काम हो गया, लेकिन उसके पीछे का जो उसका अभ्यास या शिक्षा है, जो मेहनत है, उसकी तरफ हमारी नज़र जानी चाहिए। छठवां सोपान है वो है गलतियों से न डरें, इसका क्या आशय है?
आप जब उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हैं, आप जब अपने आइडियाज पर काम करना शुरू करते हैं, आप जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है और असफलता मिलती है और हम उससे लेके घबरा जाते हैं। और हम बता दें, एक अभिजेल बेन दुरेन जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि असफलता फिर से शुरुआत करने का अवसर होती है, इस बार और अधिक बुद्धिमत्ता के साथ। तो आप ये मान के चलिए कि आप एक नई शुरुआत करें और उन्होंने ये भी बड़ा अच्छी बात कही थी कि आत्महत्या अस्थाई समस्या का स्थाई समाधान है। अपनी गलतियों के कारण जो सफलता नहीं मिलती मेहनत करने के बाद, बहुत से लोग आत्महत्या की जगह चुन लेते हैं। और आत्महत्या के बारे में जो गुरेन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आत्महत्या अस्थाई समस्या का स्थाई समाधान है, क्योंकि वो समस्या कोई स्थाई समस्या नहीं है, वो एक अस्थाई समस्या थी, लेकिन आपने उसका स्थाई समाधान खो दिया, वो गलत कर दिया। तो सुनिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए कि अब्राहम लिंकन को लें, उन्हें 21 वर्ष की उम्र में ये व्यापार में असफल हुए, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुए, 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया और फिर उससे भी उभरे। अब आप देखिए कि 52 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो आप देखेंगे कि असफलता निरंतर मिलती रही, कुछ ना कुछ गलती हुई और असफल हुए, लेकिन उन्होंने एक फिर से नई शुरुआत की। तो ये चीज में बहुत जरूरी रूप में देखना है। और यहाँ पर एक थॉमस एडिसन का बड़ा अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने आविष्कार कर रहे थे, वो करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी उनकी, उसमें गलती से आग लग गई और बीमा बहुत कम था, उससे उनकी जिंदगी भर की कमाई आग में जलकर खाक हो गई। लेकिन उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारी कोई कमियां भी इसके साथ जलकर राख हो गई।
क्या बात है।
तो आप देखिए कि इतनी बड़ी बात कही उन्होंने, कहा ईश्वर का आशीर्वाद है, उसकी कृपा से हम फिर से शुरुआत करेंगे। और आप देखिए पूरे शुरुआत की और सफलता मिली। और आपको बता दें थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान करीब 1000 बार वो असफल हुए थे। तो इतनी बार असफल होने के बाद भी वो सफल हुए। फिर किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपकी जो मेहनत थी, इतनी बार आपने प्रयास किया और आप असफल हो गए, तो वो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं उसको असफलता नहीं मानता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने तरीकों से बल्ब जल ही नहीं सकता।
क्या बात है। तो मैं ये जान चुका हूँ कि इतने तरीकों से बल्ब जल ही नहीं सकता है, और इस पूरी लंबी जो भी असफलता है उसको इस तरह से उन्होंने देखा। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर दृष्टि है ये। तो इसी तरह से अपनी गलतियों को हमें देखना चाहिए, और जो गलतियां हैं अगर वो करने से हम डरने लगेंगे तो नवाचार कभी कर ही नहीं सकेंगे। तो एक साहस भी ऐसा भीतर होना चाहिए। अच्छा, आप जल्दी से, चूंकि समय कम है तो हम साथ में सोपान पर संक्षेप में बात कर लेते हैं। अच्छे व्यक्तियों का सत्संग करें, साथ अच्छा हो, इस बात पर ध्यान रखें, इसका क्या महत्व है?
ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप देखिए कि आपका जैसा संगत होती है वैसी आपकी रंगत होती है। जैसे लोगों के साथ होते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं।
बिल्कुल।
हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है वो उन्नति करना। तो जब उन्नति के मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं तो सुनीता जी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सकारात्मक लोगों के साथ रहें, जो लोग सकारात्मक सोचते हैं। जैसे हमने थॉमस एडिसन की बात की थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारी कमियां भी इससे जलकर राख हो गई। तो आप देखिए इस प्रकार के विचार वाले व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आप भी कभी असफलता आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, ना कमी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, और गलत संगत से आप बच पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें एक जनरली एक चीज रहती है कि हम कंफर्ट जोन में रहने के आदी होते हैं। तो हमें हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना है, और ऐसा हम तब कर पाएंगे जब हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो कंफर्ट जोन से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। और जैसे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए सफल लोगों के साथ जब रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं हम, तो उनके साथ हमारी तैयारी में भी बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल। आप देखेंगे कई स्कूल्स जो होते हैं, कॉलेज होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो बच्चे सक्सेस होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, उसके पीछे जो बेसिक रीजन होता है कि वहां का जो एटमोसफेयर होता है, वहां के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। यही कारण है कई जो इंस्टीट्यूट है उनमें कंपटीशन के थ्रू जाते हैं लोग, और कंपटीशन के थ्रू जाते हैं तो वहां पर जितने भी लोग कंपटीशन के थ्रू पहुंचे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ योग्यता है, और वहां पर अगर आप रहते हैं तो उनके साथ आप निश्चित रूप से उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक कैसे लोगों के साथ, टीवी पर कौन सा कार्यक्रम देख रहे हैं, अखबार में कौन सी न्यूज सुन रहे हैं, कौन सी मूवी आप देख रहे हैं। तो आप संगत से मतलब व्यक्ति से नहीं है, आप टीवी पर भी सीरियल सोच समझ कर देखें कि ये सीरियल क्या हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा तो नहीं डालेगा, क्या हमारे लिए ठीक है इसको देखना, उसको देखें अन्यथा ना देखें। अच्छी संगत करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होकर रहेगा। और ये कार्य जो सोपान है इनमें क्रम से आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको फॉलो कर पाए तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति से हमें कोई रोक नहीं सकता।
तो ब्रजेश जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि संगत है, जिस संग की आपने बात की है वो सिर्फ व्यक्ति की संगत नहीं है, बल्कि जो हमारा आसपास है, चाहे वो अखबार हो, टेलीविजन हो या किताबें हो, किस तरह का साहित्य आप पढ़ते हैं, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। क्या देखते हैं आप, उस चीज को हम बहुत सकारात्मक रखें और ध्यान रखें कि जो विचार है वो एक ऊर्जा है। तो आपके आसपास जो लोग हैं किस विचार से परिचालित हैं और आप जिनकी संगत कर रहे हैं अगर वो सकारात्मक नहीं है तो आप पर प्रभाव बुरा होगा, तो इसका ध्यान रखें। तो बहुत सुंदर चर्चा रही ब्रजेश जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि उन्नति के साथ सोपान को आपने बहुत विस्तार से समझाया। उम्मीद है हमारे जो श्रोता हैं उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। आपका बहुत धन्यवाद।
आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो श्रोताओं, चलते चलते आपसे हम यही कहेंगे कि जो 7 सोपान हमने बताए, जिस पर चर्चा हुई, उसे आप आत्मसात करें। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा देखें कि आप जो कल थे उससे आज कुछ बेहतर हो गए या नहीं। तो मुझे पंक्ति याद आती है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की, जो कहते हैं कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा उस जगह से बढ़ कर सो। तो इस बढ़ने की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि कल की तुलना में आप एक कदम कहीं अपने जीवन में आगे बढ़े या नहीं, चाहे विचारों में, आदतों में, किसी भी तरह से। तो अपनी समीक्षा आप बार बार करते रहें और उन्नति के जो 7 सोपान हैं उन्हें आप अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सीप के मोती, सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक आपने सुना। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।